अरुणिमा किसी सूखे पत्ते की तरह कांप रही थी। आस्तिक उसके सामने एक डरावने इंसान की तरह नजर आ रहा था। उसकी आंखें पूरी तरह लाल हो चुकी थीं और चेहरा जकड़ गया था। उसके हाथों में उसकी पिस्तौल थी। उसने अभी अभी उस आदमी की हत्या कर दी थी जो अरुणिमा के साथ बदतमीजी कर रहा था। आस्तिक अपनी गाड़ी में आया था। उसे लगा था कि अरुणिमा शायद बहुत दूर चली गई होगी, इसीलिए वो गाड़ी लेकर निकला था। लेकिन जैसे ही वो फार्म हाउस से थोड़ा आगे पहुंचा, उसे अरुणिमा सड़क के किनारे दिख गई, और साथ ही वो शख्स भी जिसकी उसने जान ली थी। जब उसने देखा कि उस आदमी ने अरुणिमा का हाथ पकड़ा हुआ था, तो आस्तिक के दिल में एक अजीब सी आग लग गई। उसने बिना सोचे समझे गाड़ी साइड में रोकी। अगले ही पल वो गाड़ी से उतरा और सीधे जाकर उस आदमी को गोली मार दी। उसे ये पूछने की भी जरूरत नहीं लगी कि वो कौन है और अरुणिमा के साथ क्या कर रहा है। उसके लिए तो बस इतना ही काफी था कि उसने अरुणिमा का हाथ पकड़ा था। अरुणिमा अपनी जगह पर अभी भी सन खड़ी थी। आस्तिक ने अपनी गन लौटाई और वापस अपनी गाड़ी के पास जाकर उसे पीछे की सीट पर फेंक दिया। उसने गाड़ी स्टार्ट की और सीधे उसे अरुणिमा के सामने लाकर खड़ा कर दिया। पर उसने एक बार भी अरुणिमा की तरफ देखा तक नहीं, बस गाड़ी का हॉर्न बजाना शुरू कर दिया। वो लगातार हॉर्न बजा रहा था। धीरे धीरे फोन की आवाज़ भी तेज होने लगी। इससे अरुणिमा की चेतना लौटी। वो एकदम से चौंकी और देखा कि वो आदमी जमीन पर मरा पड़ा है। ये देखते ही उसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए। सामने गाड़ी में आस्तिक बिना किसी हाव भाव के बैठा था, बस लगातार हॉर्न बजा रहा था। होश में आते ही अरुणिमा समझ गई कि ये हॉर्न म्यूजिक की तरह नहीं बल्कि उसके लिए बजाया जा रहा है। उसने जल्दी से अपना बैग उठाया, एक बार उस मरे हुए आदमी की ओर देखा, फिर आंखें बंद कर लीं और दौड़ती हुई गाड़ी की तरफ गई। दूसरी ओर जाकर उसने दरवाज़ा खोला और गाड़ी में बैठ गई, मगर अभी भी उसकी हालत कांपते हुए सूखे पत्ते जैसी ही थी। उसके चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था। आस्तिक के चेहरे पर एक डबल माइंडेड मुस्कान आ गई। आखिर अरुणिमा के चेहरे का डर ही तो था जो उसे सुकून दे रहा था। आस्तिक ने अगले ही पल गाड़ी घुमा दी और फार्म हाउस की ओर बढ़ गया। जैसे ही वो फार्म हाउस के सामने पहुंचा, उसने गाड़ी रोकी, दरवाज़ा खोला और बाहर निकल आया। अरुणिमा अभी भी बहुत डरी हुई थी और बाहर नहीं निकल रही थी। आस्तिक ने शीशा नीचे किया और गाड़ी के अंदर झांकते हुए अरुणिमा से कहा, जो मारा है तुम्हारा रिश्तेदार था क्या? अरुणिमा डरते हुए आस्तिक को देखती है, फिर जल्दी से नामे सिर हिला देती है। आस्तिक के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान आ गई। उसने एक भौं ऊपर उठाई और बोला, अगर रिश्तेदार नहीं था तो उसकी मौत पर मातम क्यों मना रही हो? ये इलाका देखने में जितना खूबसूरत है उतना ही खतरनाक भी है। रात होने वाली है और रात में यहाँ अक्सर छोटे लुटेरे घूमा करते हैं, इसीलिए सिर्फ आज रात के लिए तुम्हें अपने फार्म हाउस में रुकने की इजाज़त दे रहा हूँ। पर कल सुबह होते ही यहाँ से ऐसे गायब हो जाना जैसे तुम्हें इस जगह का नाम तक पता ना हो, समझी? अपनी बात खत्म करके आस्तिक ने अरुणिमा की तरफ देखा। अरुणिमा ने तुरंत ऐसे हाँ में सिर हिलाया जैसे उसकी गर्दन पर स्प्रिंग लगा हो और उसका हाँ रुक ही ना रहा हो। आस्तिक ने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और अरुणिमा जल्दी से बाहर निकली। उसने अपना बैग सीने से चिपकाकर पकड़ा हुआ था। इस वक्त भले ही आस्तिक कितना ही खतरनाक क्यों ना लग रहा हो, लेकिन अरुणिमा को उसके अलावा अपनी सुरक्षा की कोई और जगह नजर नहीं आ रही थी। जैसे ही वे दोनों फार्म हाउस के अंदर पहुंचे, आस्तिक ने कहा, किचन उस तरफ है जी? अरुणिमा ने हैरानी से पूछा। आस्तिक जो सीढ़ियों की ओर बढ़ रहा था रुक गया। वो पलटा और अरुणिमा को देखते हुए बोला, तुम्हारा तो पता नहीं लेकिन मैं अभी अभी फीवर से रिकवर हुआ हूँ। मुझे एक बार फिर मेडिसिन लेनी है और मैं खाली पेट दवा नहीं लेता। अपने लिए ना सही, मेरे लिए कुछ बना दो क्योंकि इस घर में कोई नौकर नहीं है। ऐसा कहते हुए आस्तिक कमरे की तरफ बढ़ गया। अरुणिमा एकदम से हैरान रह गई। मतलब उसे आस्तिक के लिए डिनर बनाना होगा? और सिर्फ आस्तिक के लिए क्यों, उसे खुद के लिए भी तो खाना बनाना है। आस्तिक अगर फीवर से अभी ठीक हुआ है तो अरुणिमा भी तो प्रेग्नेंट है, उसे तो हर दो घंटे में कुछ खाने की जरूरत होती है। लेकिन वो पिछले छह घंटे से बिना कुछ खाए पिए ही थी। उसने जल्दी से किचन की ओर रुख किया। किचन में पहुंचते ही उसने देखा कि ये किचन कम और कोई वीरान जंगल ज्यादा लग रहा था। वहां उसे कुछ भी ऐसा नहीं दिखा जिससे कुछ पकाया जा सके। लेकिन तभी उसकी नज़र एक पैकेट पर पड़ी। वो जाकर उस पैकेट को खोलती है और उसमें दाल और चावल के पैकेट रखे हुए पाती है। मतलब बिल्कुल ताज़ा राशन, शायद अभी कुछ देर पहले ही लाया गया था। अरुणिमा सोच में पड़ गई। ऐसे में उसे सिर्फ एक ही चीज़ याद आई जो झटपट और हल्की बन सकती थी। उसने जल्दी से बर्तन निकाले और दाल चावल मिक्स कर एक सादी और कम मसाले वाली खिचड़ी बना दी, क्योंकि आस्तिक अभी अभी फीवर से उभरा था और उसे हल्का खाना चाहिए था। उसने खिचड़ी का बर्तन बाहर लाकर सोफे के टेबल पर रखा क्योंकि वहां डाइनिंग टेबल नहीं थी। जल्दी से दो प्लेट लगाई और पानी की बोतल लाने ही वाली थी कि उसने देखा आस्तिक नीचे आ रहा है। उसके एक हाथ में फोन था और दूसरे हाथ में चार्जर। चार्जर देखकर अरुणिमा का मन बहुत किया कि आस्तिक से चार्जर मांग ले। उसका खुद का फोन पूरी तरह डिस्चार्ज हो चुका था और उसे फोन चार्ज करने की सख्त जरूरत थी। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कहती, आस्तिक ने खुद ही चार्जर उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, अपना फोन चार्ज कर लो। अरुणिमा लपक कर चार्जर लेती है और जल्दी से अपना फोन चार्ज पर लगा देती है। तब तक आस्तिक सोफे पर बैठ चुका था, लेकिन जैसे ही उसने देखा कि खाने में खिचड़ी है, उसका मुंह बन गया। वो अरुणिमा को देखते हुए कहता है, तुम्हें इससे बेहतर कुछ नहीं मिला बनाने के लिए? जी बना सकती हूँ, ख्याली पुलाव बिना सामान के वही बन सकता है। आप इमेजिन कर लीजिए कि बिरयानी खा रहे हैं, अरुणिमा ने मुस्कुराकर जवाब दिया। और वैसे भी अभी अभी बुखार उतरा है आपका, इसीलिए हल्का खाना ही सही रहेगा। अरुणिमा आस्तिक के सामने बैठ गई और अपने हिस्से की खिचड़ी खाते हुए बोली। आस्तिक का मुंह तो बना हुआ था, लेकिन अरुणिमा की बात में दम था। उसने धीरे धीरे खाना शुरू किया। तभी उसे कुछ याद आया और वो एकदम से अरुणिमा की तरफ देखते हुए बोला, तो तुम्हें मेरे डोर का पासवर्ड कैसे पता चला? कौन सा पासवर्ड? अरुणिमा ने चौंक कर पूछा। आस्तिक ने चम्मच से दरवाजे की ओर इशारा करते हुए कहा, मेरे कमरे के डोर का पासवर्ड तुम्हें किसने बताया? अरुणिमा ने सरलता से नामे सिर हिलाते हुए कहा, मुझे किसी ने पासवर्ड नहीं बताया और मुझे इसका पासवर्ड पता भी नहीं है। अगर पासवर्ड नहीं पता था तो मेरे कमरे में रस्सी से चढ़कर आई थी? आस्तिक ने चौंक कर पूछा। मैं क्यों रस्सी से चढ़कर आऊंगी? अरुणिमा ने तुरंत जवाब दिया। तो फिर तुम अंदर कैसे आई? अब की बार आस्तिक थोड़ा नाराज हो गया। अरुणिमा ने चम्मच से खिड़की की तरफ इशारा करते हुए कहा, वो वहां से। आस्तिक खिड़की की ओर देखता है और हैरान रह जाता है। खिड़की के पास एक छोटा स्टूल रखा था और खिड़की आधी खुली हुई थी। ये देखकर आस्तिक का चेहरा दूसरी ओर हो गया। वो अपनी हंसी छुपा रहा था। उसे जोर से हंसी आ रही थी, लेकिन वो जबरदस्ती खुद को कंट्रोल कर रहा था ताकि अरुणिमा को पता न चल सके। अरुणिमा ने जब उसे मुंह छुपाते देखा तो हैरानी से पूछा, क्या हुआ? आस्तिक ने जल्दी से खुद को संयमित किया और बोला, कुछ नहीं, इसमें नमक कम है, मुझे नमक ला दोगी? अरुणिमा ने तुरंत प्लेट नीचे रखी और किचन की तरफ भाग गई। उसके जाते ही आस्तिक हंसने लगा। वो अब भी मुंह दबाकर हंस रहा था ताकि अरुणिमा को पता ना चले, लेकिन उसे सच में अरुणिमा की यह हरकत किसी कॉमेडी मूवी जैसी लग रही थी। वो जल्दी से खिड़की के पास गया और नीचे झांका। खिड़की के नीचे अब भी दो ईंटें रखी थी, मतलब अरुणिमा उन्हीं ईंटों के सहारे चढ़कर खिड़की से अंदर आई थी। ये देखकर उसकी हंसी और तेज हो गई।
आस्तिक जल्दी से वापस अपनी जगह पर बैठ गया और खुद को संयमित किया। अरुणिमा जब उसके पास एक कटोरी में नमक रखकर आई तो आस्तिक हल्के से मुस्कुराते हुए बोला, 1207। क्या? अरुणिमा ने चौंक कर पूछा। डोर का पासवर्ड, अगली बार खिड़की से मत आना, आस्तिक ने खिचड़ी में हल्का नमक डालते हुए कहा।